चंद्रमा स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूं। वे गौर के क्षितिज या दिगंत पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। अनुवाद दोहराइए। मैं सूर्य तथा चंद्रमा स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद दोनों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे गौड़ के क्षितिज या दिगंत पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने तथा आश्चर्यजनक रूप से सबों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। तो मंगलाचरण का यह दूसरा श्लोक है। मंगलाचरण के पहले छह श्लोकों में कविराज गोस्वामी चैतन्य तत्व का वर्णन करते हैं और इस दूसरे श्लोक में उन्होंने नित्यानंद प्रभु की चर्चा भी की है। उन दोनों की तुलना वो सूर्य और चांद से करते हैं और कहते हैं कि गौड़ देश में उनका उदय हुआ है और जिस प्रकार से जब सूरज और चांद की रोशनी होती है तो अंधकार नहीं होता है, अंधकार मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव के साथ ही सारे जगत में अज्ञान का अंधकार मिट गया। तो इसी कारण से कविराज गोस्वामी उनकी तुलना चांद और सूर्य से करते हैं। सूर्य चंद्र हरे जाय छे सब अंधकार, वस्तु प्रकाशीय करे धर्मेरा प्रचार। जिस प्रकार से सूरज और चांद अंधकार को हर लेते हैं, उसी प्रकार से वस्तु प्रकाशीय करे धर्मेरा प्रचार। वो सही परम सत्य को स्थापित करके धर्म का प्रचार करते हैं और इस दृष्टि इस तरह से अज्ञान का अंधकार वो दूर करते हैं। अज्ञान तमेर नाम कोही कैतब, धर्म अर्थ काम मोक्ष वंश आदि सब। तो ये कौन सा अज्ञान का अंधकार है, क्या चीज है ये, किस प्रकार के अज्ञान को वो दूर करने के लिए आए हैं? तो यहां कविराज गोस्वामी विशेष करके कहते हैं जो कैतव धर्म है, विशेष करके ऐसे धर्म का विनाश करने के लिए वो आए हैं। कैतव धर्म क्या चीज है? तो कविराज गोस्वामी कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष से शुरू होने वाले जितने भी धोखेबाजी के धर्म हैं, ये सब इन सब को इन सब का खंडन करने के लिए, इन सब को गलत सिद्ध करने के लिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ है। और फिर कविराज गोस्वामी भागवत के प्रसिद्ध पहले स्कंद के पहले अध्याय के ही दूसरे श्लोक का प्रमाण देते हैं। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सदाम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो इस श्लोक में भी कैतव शब्द का प्रयोग किया हुआ है। व्यास देव जी कह रहे हैं कि ये भागवत धर्म जो है ये बहुत ही विशेष है। इस भागवत धर्म का की व्याख्या या इसका वर्णन इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में पाया जाता है। तो इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में ऐसे अन्य समस्त धर्मों का तिरस्कार किया गया है, उनको बहिष्कृत किया गया है जो कि सच्चे धर्म नहीं है, जो कि भागवत धर्म नहीं है। धर्म प्रोच्छित कैतवोत्र परमो, ये परम धर्म की स्थापना करने मात्र है ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ। और इसमें जो अन्य धर्म है कैतव धर्म धोखेबाजी के धर्म, प्रउज्जित उज्जित मतलब त्यागना, उसको बाहर निकाल देना, तो प्र मतलब संपूर्ण रूप से, ऐसे श्रीधर स्वामी कहते हैं। तो संपूर्ण रूप से ऐसे धोखेबाजी के धर्मों को पूरी तरह से बहिष्कृत कर देना, ये कार्य श्रीमद् भागवत में किया गया है। केवल शुद्ध भागवत सिद्धांत भागवत धर्म के सिद्धांतों की स्थापना की हुई है। तो ये श्लोक तो बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु आज के चर्चा के संदर्भ में ये कहा जा सकता है, श्रील प्रभुपाद जी ने काफी लंबा तात्पर्य लिखा हुआ है इसके ऊपर, और वो कहते हैं कि जो कर्म कांड का मार्ग है वो भी धोखेबाजी का मार्ग है, क्योंकि ये केवल हमें भौतिक सुख की प्राप्ति करा देता है। भौतिक सुख तो क्षणिक है, क्षणभंगुर है। तो अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि धर्म का उद्देश्य है क्षणभंगुर सुख की प्राप्ति करना, तो ये तो धोखा ही है, क्योंकि सही धर्म का उद्देश्य ये नहीं है। सही धर्म का उद्देश्य है कि वो जीव को ऐसे कोई लाभ प्रदान करे जो कि शाश्वत रहेगा। कोई क्षणिक लाभ प्रदान करने से क्या लाभ, और व्यक्ति अपना सारा मूल्यवान मनुष्य जीवन ऐसे क्षणिक सुख के पीछे बिताएगा धर्म के नाम पर, ये सोचकर कि यही धर्म का उद्देश्य है, और ऐसे उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होता है, क्योंकि शाश्वत दिव्य उद्देश्य की प्राप्ति के बजाय उसे फिर क्षणभंगुर भौतिक सुख जो कि दुख का कारण है उससे संतुष्ट रहना पड़ता है। इसलिए कर्म कांड जो है ये हमें कभी भी इस भौतिक जगत के त्रिविध तापों से हमेशा के लिए राहत नहीं दिला सकते। फिर आ गई बात ज्ञान मार्ग की। ज्ञान मार्ग जो है वो भी हमें परम आनंद या भौतिक जगत से हमेशा के लिए राहत नहीं दिला सकता है, और इसमें भी हमें कई जन्म बिताने पड़ते हैं, और इसमें फिर हम सोचने लगते हैं कि हम भगवान हैं, हमें भगवान के निराकार रूप में लीन होना है, और अंततः फिर हमें भौतिक जगत में ही आना पड़ता है। साथ साथ जो योग मार्ग में चल रहे हैं, ये योग मार्ग भी परम कल्याण का मार्ग नहीं है, क्योंकि इसमें खतरा ये होता है कि योग मार्ग की सिद्धियों को जब योगी प्राप्त कर लेता है तो उसमें ही उलझ जाता है। ऐसी सिद्धियां प्राप्त करने से उसे बहुत शक्तियां प्राप्त होती हैं। इन शक्तियों और ऐश्वर्यों के द्वारा वो यह संसार का भोग और भी श्रेष्ठ तरीके से करने का प्रयास करता है, और उसके अंदर अन्यों के ऊपर नियंत्रण करने की सूक्ष्म शक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे किसी के मन की बात जान लेना, किसी के मन के ऊपर प्रभाव करना, या अचानक कहीं से किसी चीज को प्रकट कराना जो कि यहां पर इस समय नहीं है, और इस प्रकार से दूसरों को चकाचौंध कर देना जिससे कि वो फिर हमारे शरण में आ जाते हैं, फिर हम उनको प्रभावित कर सकते हैं और भोग और ऐश्वर्य के लिए। क्योंकि ऐसे योगी का हृदय अभी तक पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है, इसलिए ऐसे सिद्धियों का और ऐश्वर्यों का प्रयोग वो भगवान की सेवा के लिए नहीं करेगा, बल्कि अपने भौतिक प्रगति के लिए, सूक्ष्म या स्थूल इनके लिए करेगा। इसलिए ऐसे सिद्धियों को प्राप्त करना भी ये एक सही भागवत मार्ग नहीं है, उसे भागवत मार्ग से ऐसी सिद्धियां दूर हटा देती है। और फिर जहां तक देवी देवताओं की उपासनाओं की बात है तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये भी और भी ज्यादा खतरनाक है, और फिर भगवत गीता का प्रमाण रख के प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग, जिन लोगों का हृदय काम वासनाओं से भरा हुआ है, जिनकी बुद्धि, जिनकी चेतना विकृत है, ऐसे इंद्र तृप्ति की इच्छाओं से वही मात्र देवी देवताओं की उपासना करते हैं। कामैस्तैस्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्य नियतः स्वया। जैसे कि श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो लोग इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं तो वही लोग विभिन्न देवी देवताओं के पास जाते हैं, अलग अलग उपासना की पद्धतियों को स्वीकार करते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जितने भी ये सारे मार्ग हैं ये कभी जीव को वास्तविक सुख प्रदान नहीं कर सकती हैं, नहीं हमें ये भौतिक कल्मशों से शुद्ध करा सकती हैं, नहीं हमें ये त्रिविध तापों से हमेशा के लिए मुक्त करा सकती हैं। इसलिए ये सब धोखेबाजी के धर्म है, क्योंकि जब इनका प्रचार किया जाता है तो इस प्रकार से ये प्रस्तुत किया जाता है ज्ञान कि मानो यही सर्वोच्च है, यही सर्वोत्तम ज्ञान है, यही सबसे ऊंचा मार्ग है, और जो इस पथ में चलने वाले लोग हैं इस दृष्टि से इन मार्गों को स्वीकार करते हैं, यह सोचकर कि यह सबसे अच्छा मार्ग है। परंतु ये सारे मार्ग इंद्र तृप्ति के ऊपर आधारित होते हैं। जो कर्मकांड आदि मार्ग हैं वो स्थूल इंद्र तृप्ति के ऊपर आधारित होते हैं, क्योंकि हम देवियों से देवताओं से मांगते हैं हमें धन दीजिए, अच्छे पति या पत्नी दीजिए, बीमारी से मुक्त कीजिए, ये स्थूल रूप की इंद्रिय तृप्ति हो गई। लेकिन जो ज्ञान मार्गी लोग हैं वो सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। तो चाहे इंद्रिय तृप्ति सूक्ष्म हो या स्थूल हो, इंद्रिय तृप्ति ही है, ये भागवत धर्म नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत के दूसरे श्लोक से ये हम कह सकते हैं कि सच्चा भागवत धर्म वो है जो ऐसे इंद्र तृप्ति पर आधारित होने वाले धर्मों को पूरी तरह से त्याग देता है और केवल ऐसे धर्म को स्वीकार करता है जो केवल कृष्ण की सेवा के ऊपर निर्भर है। इसलिए केवल वही जो निर्मत्सर है ऐसे लोग ही इस भागवत धर्म को स्वीकार करते हैं। परमो इसलिए परम धर्म है, निर्मत्सराणाम सताम, ऐसे निर्मत्सर लोग जो भगवान के भक्त होते हैं ऐसे भागवत धर्म को स्वीकार करते हैं। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो कि परम वस्तु है उनका ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और साथ साथ में जो जीव उनकी भक्ति करते हैं उनका भगवान के साथ जो संबंध है वो ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। और इसलिए इस धर्म का ज्ञान जो है श्रीमद् भागवत में दिया गया है, जिसकी रचना श्रील वेद व्यास जी ने की है। तो ये भागवत धर्म तो केवल कृष्ण भक्ति का धर्म है। और आगे चल के कविराज गोस्वामी कहते हैं, तार मध्य मोक्षवांशा कैतव प्रधान, जहां हो ते कृष्ण भक्ति होय अंतर्धान। तो जितने भी ये धोखेबाजी के धर्म हैं, इनमें से सबसे प्रमुख, सबसे ऊंचा, सबसे पहले नंबर का है मोक्ष वांछा का धर्म, मोक्ष की इच्छा रखना। तो ये ज्ञान मार्ग में या योग मार्ग में जब सिखलाया जाता है कि हमें निराकार में लीन होना है, ये सबसे बड़ा धोखेबाजी का धर्म है। क्यों? क्योंकि जहां होते कृष्ण भक्ति होय अंतर्धान, क्योंकि कृष्ण भक्ति जो है वो नष्ट हो जाता है, फिर कोई संभावना नहीं है कि ये कृष्ण भक्ति का उदय ऐसे व्यक्ति के हृदय में फिर से होगा। क्योंकि ये जो मोक्ष प्राप्त करने की बात है ये भी एक नास्तिकवाद ही है, जो नास्तिकवाद मोक्ष के रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसको ज्ञान मार्ग कहते हैं। और जितने भी इस संसार में शुभ और अशुभ कार्य हैं जिनका भगवत भक्ति से कोई संबंध नहीं है, वो सब के सारे कैतव धर्म है। इसलिए ये धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो धर्म शब्द है, जो चार पुरुषार्थों का वर्णन है, उनमें से पहला जो धर्म है वो ऐसे इंद्र तृप्ति का धर्म है, वो धर्म जिससे कि अर्थ और काम या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसे धर्म को तो यहां पर त्याग दिया गया है, प्रउज्जित पूरी तरह से संपूर्ण रूप से त्याग दिया हुआ है और केवल पंचम पुरुषार्थ भक्ति इसको स्वीकार किया गया है और कुछ नहीं। तो आइए यहां पे पढ़ते हैं, यहां क्या लिखा हुआ है कोई पढ़िएगा, माइक कहां पर है। कौन पढ़ेंगे? एक एक पॉइंट पढ़ते रहेंगे।
चैतन्य महाप्रभु व नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए हैं अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए, कैतव धर्म।
अर्थात चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट इसलिए हुए हैं कि ऐसे जितने भी सारे धोखेबाजी के धर्म हैं उनका विनाश करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए। आगे पढ़िए।
जगत को पूर्ण सत्य के ज्ञान से प्रकाशमान करने के लिए शुद्ध भक्ति,
शुद्ध भक्ति के ज्ञान का प्रचार करने के लिए। कविराज गोस्वामी कहते हैं, तत्व वस्तु कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम रूप नाम संकीर्तन श्रभ आनंद स्वरूप। तो ये सब देने के लिए आए हैं नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। और ये सिद्धांत क्या है कि परम सत्य तत्व वस्तु कौन है? कृष्ण है। और हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से ये कृष्ण प्रेम का उदय हृदय में हो सकता है। और ये कृष्ण प्रेम का स्वरूप है आनंद, सब आनंद स्वरूप। ठीक है, उसमें है फिर घुमाइए। और फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं, तो ये हमने अभी बातें कही हैं, ये केवल आपके जानकारी के लिए, आप में से जो लिखना चाहते हैं कि कैतव धर्म के कितने भाग हैं, केवल चार उदाहरण हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये धर्म कौन सा धर्म है आप में से कोई बताइएगा? इंद्र तृप्ति का धर्म है, वो धर्म जो कि अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पालन किया जाता है। ये भक्ति की बात नहीं है, ये भागवत धर्म नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, वो कहते हैं कि हे अर्जुन, सारे अन्य धर्मों को त्यागो, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो इस धर्म की बात कर रहे हैं, कौन से धर्म को त्यागना चाहिए? इस धर्म को जो कि अर्थ काम और मोक्ष से संबंधित है। और किस धर्म को स्वीकार करो? माम एकम शरणम व्रज, इस धर्म को स्वीकार करो, क्योंकि यही एकमात्र धर्म है, सच्चा धर्म है। अन्य जितने भी धर्म हैं वो कैतव धर्म है, धोखेबाजी के धर्म है। और सच्चा धर्म है भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना। माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरे शरण में आओ हे अर्जुन। तो ये केवला भक्ति, केवल भगवान श्री कृष्ण के शरण को ग्रहण करना, इस धर्म का प्रचार करने के लिए और इसका आचार करके प्रचार करने के लिए, आचरण करके प्रचार करने के लिए महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए हैं। और मोक्ष, मोक्ष के बारे में क्या लिखा हुआ है?
सर्वोच्च धोखे की पद्धति।
इन सबों में से, सब कैतव धर्मों में से सबसे श्रेष्ठ कैतव धर्म कौन सा है? मोक्ष की प्राप्ति। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ये भागवत धर्म की स्थापना करने आए हैं, सच्चा धर्म जो कैतव धर्म नहीं है। तो ऐसे भागवत धर्म की पहचान कैसे होती है? मैयेगा तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, दुई भाई हृदय रक्षोली अंधकार दुई भागवत संगे कारण साक्षात्कार। ये तो भाई जो हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, हृदय में, हम सबके हृदय में जो अंधकार है अज्ञान का, उसका विनाश करने आए हैं। इसलिए हमारी पहचान वो दो भागवतों से करा देना चाहते हैं। कौन से हैं वो दो भागवत? पढ़िएगा। ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत, ये दो भागवत हैं। तो ग्रंथ भागवत अर्थात श्रीमद् भागवतम, हम लोग रोज सुबह श्रीमद् भागवतम का प्रवचन सुनते हैं। तो ये है पुस्तक भागवत या ग्रंथ भागवत। और व्यक्ति भागवत कौन होता है? जिसने श्रीमद् भागवत ग्रंथ के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लिया है, जो भागवत के सिद्धांतों का आचरण अपने जीवन में करता है, जो भगवान का भक्त है, वो व्यक्ति भागवत है। तो पुस्तक भागवत है श्रीमद् भागवतम और व्यक्ति भागवत है कृष्ण भक्त। तो आगे पढ़िएगा।
द्वारा भगवान जीवात्मा के हृदय में भक्ति रस को स्थापित करते हैं।
दुई भागवत द्वार दिया भक्ति रस तहर हृदय तारा प्रेम है वर्ष। तो इन दो भागवतों के माध्यम से भगवान जो है वो भक्त के हृदय में प्रेम का उदय करा देते हैं, और इस प्रकार से भगवान अपने भक्त के प्रेम के वश में आ जाते हैं। तो ये दोनों चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक साथ प्रकट हुए हैं गौर देश में, बंगाल में, और बहुत ही दयालु हैं सारे पतित जीवों के ऊपर। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इन दो प्रभुओं के चरणों में हमें सब वंदना करना चाहिए, हमें नमस्कार करना चाहिए, और इनका आश्रय लेने से आध्यात्मिक पथ की प्रगति में जितने भी कष्ट हैं या बाधाएं आएंगी वो सब दूर हो पाएंगी। और इस प्रकार से कविराज गोस्वामी दूसरे श्लोक मंगलाचरण के दूसरे श्लोक की समाप्ति करते हैं और कहते हैं कि अभी मैंने पहले दो श्लोकों का वर्णन कर लिया है, अब सुनिए तीसरे श्लोक की व्याख्या। मैंने जानबूझकर और विस्तार में व्याख्या नहीं की है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये ग्रंथ बहुत मोटा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए। और फिर वो कहते हैं मितम च सारम च वचो हि वाग्मिता, जो बहुत संक्षिप्त रूप में जो सत्य कहा जाता है उसे वाग्मिता कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने वचन में बहुत निपुण है तो उसे संक्षिप्त में सब कुछ कहने का प्रयास करना चाहिए। जो बातें 10 शब्दों में कही जा सकती हैं उनके लिए 20 शब्दों का प्रयोग क्यों करना चाहिए। तो कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं संक्षेप में सारे परम सत्य का वर्णन कर रहा हूं, और जो कविराज गोस्वामी का वर्णन है अगर हम उसे पढ़ेंगे तो हमें क्या लाभ मिलेगा, फलश्रुति क्या होगी। तो वो कहते हैं शुनिले खंडी बे चित्ते रज्ञानादि दोष कृष्ण गाढ़ प्रेम हावे पाई बे संतोष। वो कहते हैं शुनिले, बड़ी नम्रता से श्रद्धा पूर्वक कोई व्यक्ति अगर इस चैतन्य चरितामृत को का श्रवण करेगा, चित्तेर अज्ञान आदि दोष जितने भी खंडी बे जितने भी हमारे दोष हैं अज्ञान आदि दोष उन सब का खंडन होगा, नाश होगा। साथ साथ में कृष्ण गाढ़ प्रेम होवे, जो बहुत ही उन्नत प्रेम है, बहुत ही गाढ़ प्रेम है, उसका उदय होगा और साथ साथ बड़े संतोष की प्राप्ति होगी। यही शांति का पथ है। इसलिए हमें चैतन्य चरितामृत को पढ़ते रहना चाहिए। श्री रूप रघुनाथ पदे जर आश चैतन्य चरितामृत को ही कृष्णदास। तो रूप और रघुनाथ के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि कृपा याचना करते हुए मैं चैतन्य चरितामृत बोल रहा हूं। इसके साथ चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के पहले अध्याय की समाप्ति होती है, जिसमें कि कविराज गोस्वामी ने 17 मंगलाचरण के श्लोकों का उल्लेख किया है। साथ साथ पदे जर आश चैतन्य चरितामृत को ही कृष्णदास। तो रूप और रघुनाथ के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि कृपा याचना करते हुए मैं चैतन्य चरितामृत बोल रहा हूं। इसके साथ चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के पहले अध्याय की समाप्ति होती है, जिसमें कि कविराज गोस्वामी ने 17 मंगलाचरण के श्लोकों का उल्लेख किया है। साथ साथ पहले 2 श्लोकों की व्याख्या भी उन्होंने इस पहले अध्याय में की है, और बाकी के जो मंगलाचरण के श्लोक हैं हम ने उनको पढ़ा नहीं है, न ही उनकी चर्चा की है। जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो फिर जिन अध्यायों में उन मंगलाचरण के श्लोकों की चर्चा हुई है उस समय ही हम उन मंगलाचरण के श्लोकों की बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अभी अगली बार परीक्षा होगी, निर्जल एकादशी है ना मंगलवार को, तो अच्छा समय है। कोई भक्त कह रहे थे कि निर्जल एकादशी या परीक्षा नहीं रखें तो अच्छा है, बल्कि हमारा विचार है कि बहुत अच्छा रहेगा। निर्जल एकादशी के दिन पर परीक्षा होगा तो समय तो इस प्रकार से कट जाएगा, पता नहीं चलेगा कि प्यास लगी है भूख लगी है, क्योंकि पढ़ाई करना होगा, परीक्षा देना होगा, तो हमारे मन हमारी इंद्रियां सब पूरी तरह से गौर लीला में गौर कथा में मग्न होंगी। तो शरीर की मांगों को हम ज्यादा परेशान नहीं होंगे। तो पहले अध्याय में जो हम सुन चुके हैं उसके ऊपर सरल प्रश्न होंगे, तो जो यहाँ पर चार्ट में दिखाए गए हैं उनके ऊपर प्रश्न आधारित होंगे। और विशेष करके आप अगर पढ़ सकते हैं चैतन्य चरितामृत का पहला अध्याय, मंगलाचरण के श्लोक न पढ़ें तो ठीक है, केवल पहले दो मंगलाचरण के श्लोक और बाद वाले श्लोक पढ़िए। साथ साथ पहले अध्याय की चर्चा शुरू होने के पहले एक सामान्य परिचय दिया गया था चैतन्य चरितामृत के बारे में, तो उसके बारे में भी थोड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत का संबंध, चैतन्य भागवत में क्या है, चैतन्य चरितामृत में क्या है, चैतन्य चरितामृत का विभाजन कैसे हुआ है, किस प्रकार से कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना की, क्यों की, तो ये थोड़े चीजें जिनकी चर्चा पूर्व प्रवचनों में हुई थी उनके बारे में भी थोड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत सरल होंगे प्रश्न और कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। आप में से जो परीक्षा देना चाहें अवश्य अगले मंगलवार को यहां पर आए इसी समय 1 बजे से आगे चल के, और पुस्तक साथ में नहीं रखना है आपको, और पढ़ के अभी 3-4 दिन है अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और आप में से जो भी भक्त परीक्षा के लिए बैठेंगे आप सबके लिए विशेष दिव्य भेंट और पुरस्कार दिए जाएंगे, भले आप परीक्षा में पास हो या फेल हो सबको पुरस्कार मिल जाएंगे। आपको परीक्षा के लिए बैठना ही आपका पास होना है, ठीक है। तो अगले आने वाले मंगलवार को 1 बजे ठीक परीक्षा होगी। आप उत्तर दे सकते हैं हिंदी में दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, हिंदी में नहीं दे पाएंगे तो अंग्रेजी में दीजिए, बंगाली में दीजिए, उड़िया में दीजिए या कोई भी भाषा में दीजिए, ठीक है। परंतु आइए अच्छी तरह से पढ़ाई करके अब आ जाइए, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत समय है तो हम 3रे अध्याय की चर्चा थोड़े समय के लिए करेंगे। फिर अगले शुक्रवार को दूसरे अध्याय की चर्चा हम गहराई में करेंगे। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर बातें हमको जानने को मिलेंगी जैसे हम आने वाले 4-5 अध्याय पढ़ेंगे कि वास्तव में हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है ये चैतन्य चरितामृत। ऐसी सब जानकारी दी हुई है कि ऐसा लगता है सारे दुनिया को पढ़ना चाहिए, सारे दुनिया को जान लेना चाहिए कि ऐसे तत्व भी होते हैं और हैं। तो आइए अभी 3रे अध्याय की शुरुआत करते हैं। 2रे अध्याय की क्षमा कीजिए, मंगलाचरण का 3रा श्लोक। जो यहां पर बोर्ड पे है आप सब देख रहे हैं, देख पा रहे हैं,
यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि
तदप्यस्य तनुभा य आत्मांतर यामि पुरुषति सोस्यांश विभवः षडैश्वर्यैः पूर्णो या इह भगवान् स स्वयमयम् न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परं इह यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा य आत्मान्तर्यामि पुरुषति सोऽस्यांश विभवः षड् ऐश्वर्यैः पूर्णो य इह भगवान् स स्वयमयम् चैतन्यात् कृष्णा जगति परतत्त्वं परम् इह षडैश्वर्यैः पूर्ण न चैतन्या कृष्णा जगति परपत्पत्मह्यनु सोऽस्यांश विभवः षडैश्वर्यैः पूर्णो य इह भगवान् स स्वयमयम् चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा य आत्मान्तर्यामि पुरुष इति सोऽस्यांश विभवः षडैश्वर्यैः पूर्णो य इह भगवान् स स्वयमयम् न चैतन्यात् कृष्णा जगति परतत्त्वं परं विह अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा जिसका वर्णन उपनिषदें निर्विशेष ब्रह्म के रूप में करती हैं वह मात्र उनके शरीर का तेज है और परमात्मा रूप भगवान उनका अंतर्यामी अंश है। वे छह ऐश्वर्यों से पूर्ण साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। वे परम सत्य हैं और अन्य कोई सत्य न उनसे बड़ा है न उनके समान है। दोहराइएगा, जिसका वर्णन उपनिषदें निर्विशेष ब्रह्म के रूप में करती हैं वह मात्र उनके शरीर का तेज है और परमात्मा रूप भगवान उनका अंतर्यामी अंश है। वे छह ऐश्वर्यों से पूर्ण साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। वे परम सत्य हैं और अन्य कोई सत्य न
उनसे बड़ा है
न उनके समान है। तो मंगलाचरण के तीसरे श्लोक की व्याख्या आदिलीला के दूसरे अध्याय में कविराज गोस्वामी करेंगे। इस श्लोक का अनुवाद हम अभी सुन चुके हैं और इस श्लोक के द्वारा क्या व्यक्त करना चाहते हैं कविराज गोस्वामी, क्या संदेश देना चाहते हैं, वो इस अध्याय में स्पष्ट होता है। इस श्लोक की व्याख्या पूरी तरह से विस्तार में वो करते हैं। तो कविराज गोस्वामी का उद्देश्य क्या है, इस श्लोक के माध्यम से वो क्या साबित करना चाहते हैं, तीन चीजें पढ़िएगा। पहली बात,
हम लोग परमात्मा और भगवान तत्वों के मूल स्रोत श्री कृष्ण हैं।
श्री कृष्ण, वृंदावन के श्री कृष्ण, ये ब्रह्म परमात्मा और भगवान के स्रोत हैं, मूल स्रोत। आगे बढ़िए, दूसरी बात क्या साबित करना चाहते हैं कविराज गोस्वामी।
श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है।
श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भी अवतारी हैं, अवतार नहीं है, पूर्ण स्वयं भगवान कृष्ण है। तीसरी बात,
अतः श्री चैतन्य महाप्रभु भी सभी तत्वों के स्रोत हैं।
अतः श्री चैतन्य महाप्रभु भी सभी तत्वों के स्रोत हैं। क्यों? क्योंकि उनमें और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है और श्री कृष्ण सारे समस्त तत्वों के उद्गम हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी समस्त तत्वों के स्रोत हैं। और क्रम से कविराज गोस्वामी ऐसे व्याख्या करते जाएंगे। तो इस श्लोक में हम देखते हैं यद अद्वैतम, अद्वैत जिसका कोई दूसरा न हो, अद्वैत द्वैत न हो, यद जिनका ब्रह्म उपनिषदि जिनका वर्णन उपनिषदों में किया जाता है वो क्या है, ये ब्रह्म निराकार ब्रह्म। अस्य तनु भा, तनु मतलब शरीर, भा मतलब जो तेज है, जो प्रकाश है, जो कांति है। तो ये निराकार ब्रह्म क्या चीज है, ये तो केवल भगवान श्री कृष्ण के शरीर की कांति है, दिव्य शरीर की का तेज है, जिस ब्रह्म का वर्णन उपनिषदों में पाया जाता है वो भगवान के शरीर का तेज है। ये पहला लाइन है इस श्लोक का। फिर दूसरा, यह आत्मांतर, यह आत्म अंतर्यामी पुरुष इति सह अस्य अंश विभवः, और ये जो अंतर्यामी है हर एक के अंतःकरण में विराजमान है जिनको परमात्मा कहते हैं, वो भी पुरुष हैं, वो भी परम भोक्ता हैं, वो क्या हैं, वो अंश विभवः भगवान के अंश मात्र हैं, वो श्री कृष्ण के, परमात्मा श्री कृष्ण के अंश रूप हैं और वो भी पुरुष ही कहलाते हैं, वो भी भगवान ही कहलाते हैं। साथ साथ तीसरी बात, षडैश्वर्य ही पूर्णो य इह भगवान स स्वयं अयम। तो ये जो हैं जिनका नाम श्री चैतन्य महाप्रभु है, श्री कृष्ण है, ये कौन है, षडैश्वर्य पूर्ण, षट ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है, ये स्वयं भगवान है, केवल भगवान नहीं, स्वयं भगवान। भगवान शब्द की भी श्रेणियां होती हैं, हम देख चुके हैं पहले भी, विलास विलास विग्रह है, प्रकाश विग्रह है और अन्य भी विभाजन है। तो कविराज गोस्वामी कहना चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विलास विग्रह नहीं है, ये तो साक्षात स्वयं भगवान है। न चैतन्यात कृष्णात जगति परतत्वम परम इह, परतत्व ऐसा कोई तत्व नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण से श्रेष्ठ हो, पर हो, ऐसा कोई तत्व नहीं है। और श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों अभिन्न हैं, एक ही हैं, और उनसे बढ़कर कोई तत्व नहीं है। तो ये इस श्लोक में कहा गया है। तो पहले फिर कविराज गोस्वामी निराकार ब्रह्म की का विश्लेषण करेंगे, फिर परमात्मा का, फिर भगवान का। सबसे लंबी व्याख्या और सबसे हृदय को प्रसन्न करने वाली व्याख्या भगवान की है, बड़े विस्तार में करने वाले हैं वो। जब वो बताएंगे कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, फिर कहेंगे कि भगवान का मतलब है विष्णु तत्व, और विष्णु तत्वों के भी उद्गम है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण न केवल ब्रह्म के स्रोत है, न केवल परमात्मा के स्रोत है, परंतु वो भगवान के भी स्रोत है, क्योंकि भगवान में सारे विष्णु तत्व आ जाते हैं। विष्णु आ जाते हैं, नारायण आ जाते हैं, नरसिंह देव आ जाते हैं, रामचंद्र भी होते हैं, भगवान के जितने भी विलास विग्रह हैं, प्रकाश विग्रह हैं, जितने भी अवतार हैं, वो सब भगवान में शब्द में सम्मिलित हैं। परंतु श्री कृष्ण इन सब के भी उद्गम हैं, स्रोत हैं। और फिर कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर व्याख्या करेंगे इस वाद के ऊपर कि नारायण श्रेष्ठ है या कृष्ण। जनसाधारण में यह विचार है कि कृष्ण भगवान उत्पन्न होते हैं नारायण से, नारायण आदि भगवान हैं, और नारायण से विभिन्न अवतार होते हैं, और उनमें से एक अवतार श्री कृष्ण है। परंतु कविराज गोस्वामी बतलाने वाले हैं कि नहीं, कृष्ण स्वयं भगवान है, और कृष्ण से विभिन्न अंश, विलास विग्रह, प्रकाश विग्रह, अवतार आदि उत्पन्न होते हैं, इसलिए नारायण श्री कृष्ण के अंश हैं, न कि कृष्ण नारायण के अंश हैं। और इस विषय के ऊपर काफी लंबा चर्चा है इस अध्याय में, वो हम अगले शुक्रवार को देखेंगे परीक्षा के बाद। तो चलिए शुरुआत में हम इन तीन तत्वों का परिचय ले लेते हैं। पढ़िएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है इसमें।
परम सत्य के तीन रूप ब्रह्म, परमात्मा, भगवान।
तो ब्रह्म के बारे में ये तीन प्रकार है या तीन रूप हैं परम सत्य के। तो ब्रह्म के बारे में क्या लिखा गया है? तो ब्रह्म सर्वव्यापी दिव्य प्रकाश है, जो कि कहाँ है?
भगवान की प्रकाशमान दिव्य कांति,
जो भगवान की दिव्य प्रकाशमान कांति है, भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न होने वाला ये प्रकाश है। और आगे पढ़िए, फिर परमात्मा क्या है?
प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान आंशिक
प्राकट्य। परमात्मा ये भी भगवान के आंशिक प्राकट्य हैं, अंश रूप हैं भगवान के, और वो हर एक प्राणी के रूप में स्थित हैं, चतुर्भुज रूप में कमलासन पर स्थित हैं। आपने भगवद गीता में भी ये सुंदर चित्र देखा होगा परमात्मा का, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए अपने चतुर्भुजों में, बड़े सुंदर रूप है उनका। वो हमारे हृदय में स्थित हैं, सब प्राणियों के हृदय में स्थित हैं, और ये भगवान के अंश हैं परमात्मा। फिर तीसरा,
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मूल रूप
भगवान। फिर से पढ़िए भगवान की व्याख्या।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान,
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो एक व्यक्ति है परम सत्य, एक व्यक्ति है, और आगे भी कुछ है?
मूल रूप,
मूल रूप। तो यहां पर इन तीनों का परिचय थोड़ा संक्षेप में कर लेते हैं, थोड़ा घुमाइए। अब पहले थोड़े ब्रह्म की परिचय ले लेते हैं। निराकार ब्रह्म, तो निराकार ब्रह्म क्या चीज है? हम सुन चुके हैं दिव्य कांति है, आगे पढ़िए निराकार ब्रह्म के बारे में।
परम पुरुष की प्रकाशमान कांति,
परम पुरुष की प्रकाशमान कांति, ये ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में भी है, और भगवद गीता में भी 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, कि निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं। आगे पढ़िए।
सर्वव्यापी कांति मान सफेद प्रकाश,
उपनिषदों में ऐसे वर्णन किया हुआ है कि ये प्रकाश बहुत सफेद है, बिल्कुल शुद्ध प्रकाश है, ये सर्वव्यापी है, आध्यात्मिक जगत में भी और भौतिक जगत में भी, सब जगह निराकार ब्रह्म का प्रकाश है। तो आप पूछेंगे कि भौतिक जगत में निराकार ब्रह्म का प्रकाश कैसे है? आगे पढ़िए।
भौतिक जगत का प्रकाश इस ब्रह्म का प्रतिबिंब है।
हाँ, तो जो भी प्रकाश हम यहां पे देखते हैं इस भौतिक जगत में, वो सूर्य से उत्पन्न होता है, और सूर्य की रोशनी भी निराकार ब्रह्म का ही एक प्रतिबिंब है। तो जो भी रोशनी, जो भी प्रकाश यहां भौतिक जगत में पाया जाता है, वो निराकार ब्रह्म का ही एक प्रतिबिंब मात्र रूप है। हाँ, आगे पढ़िए।
ब्रह्म से असंख्य ब्रह्मांड आते हैं।
हाँ, तो निराकार ब्रह्म में ही महत्तत्व होता है, जिसमें से कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का उद्गम होता है। महाविष्णु के दृष्टिपात से महत्तत्व जो है ये विचलित हो जाता है, और फिर इसमें से सारे भौतिक तत्व वो तैयार हो जाते हैं। तो ये सब स्थित हैं, आश्रित हैं ब्रह्म में, निराकार ब्रह्म में। तो हालांकि ब्रह्म के अंदर अपने आप में कोई विविधता नहीं है, क्योंकि ये तो केवल प्रकाश है, फिर भी सारी जितनी भी विविधताएं हैं भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में, वो निराकार ब्रह्म में स्थित हैं। आगे पढ़िए।
विविधता विहीन,
इसलिए निराकार ब्रह्म विविधता विहीन है, और इसलिए जो ज्ञानी लोग हैं ऐसे विविधता विहीन निराकार की उपासना करना चाहते हैं, और इस दुनिया के विविधता को नकारना चाहते हैं, कहते हैं कि यह सब मिथ्या है, क्योंकि इस दुनिया के विविधता से वो परेशान हो गए हैं। इस दुनिया के विविधता का भोग लेते लेते बहुत दुख मिला है आज तक इतने करोड़ों जन्मों में, इसलिए वो सोचते हैं कि परम सत्य वो होगा जिसमें विविधता ही नहीं है। तो इसलिए उनको ज्योति की उपासना अच्छी लगती है, क्योंकि ज्योति में कोई विविधता नहीं है, कोई वैरायटी नहीं है, केवल प्रकाश 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 ही है मात्र। तो निराकार ब्रह्म अपने आप में तो विविधता ही विहीन है, परंतु इस विविधता विहीन ब्रह्म में आश्रय लेते हैं समस्त विविधता है। तो आगे देखते हैं कि ऐसे निराकार ब्रह्म की उपासना कौन करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, पढ़िएगा।
ब्रह्म साक्षात्कार आध्यात्मिक ज्ञान की प्रथम अवस्था।
हाँ, तो जो लोग ब्रह्मोपासक हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना करना चाहते हैं, वो क्या बहुत आगे बढ़े हुए साधक हैं? नहीं। श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत के मत के अनुसार क्या लिखा है, फिर से पढ़िए। आध्यात्मिक पथ में
आध्यात्मिक ज्ञान की प्रथम अवस्था,
ये केवल प्रथम अवस्था है, बस अभी शुरुआत कर रहे हैं वो आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ में। निराकार ब्रह्म तो प्राथमिक केवल साक्षात्कार है। आगे
भौतिक विविधताओं को धीरे धीरे नकारने से प्राप्त होती है।
नेति 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 न इति न इति न इति, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसे भौतिक संसार की विविधता को नकारते 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 जो रह जाता है सब कुछ नकारने के बाद, वो है निराकार ब्रह्म। ये ब्रह्म उपासकों की पद्धति होती है। हाँ, आगे पढ़िए।
परम सत्य का आंशिक व दूर से अनुभव।
परम सत्य का आंशिक व दूर से अनुभव, इसके लिए उदाहरण क्या है?
पर्वत दूर से एक बादल के समान प्रतीत होता है।
पर्वत दूर से एक बादल के समान प्रतीत होता है। आप जब रेलगाड़ी में सफर करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि दूर में कोई पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, परंतु दूरी इतनी है कि पहाड़ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है, और विशेष करके अगर रोशनी ठीक नहीं है, बारिश है या कोई कोहरा है, तो इतनी दूरी की वजह से और कोहरा आदि की वजह से वो बादल, वो जो पहाड़ है, केवल एक बादल के समान दिखता है। परंतु जैसे जैसे हम नजदीक जाते हैं उस पहाड़ के, वैसे वैसे हमें पता चलता है कि नहीं, ये केवल एक बादल नहीं है। बादल के अंदर कोई विविधता नहीं होती है, बादल तो केवल बादल होता है, बस धुएं के समान होता है। लेकिन जब हम इस पर्वत के और करीब जाते हैं तब देखते हैं कि नहीं, विविधता भी है इस पहाड़ के ऊपर, जगह जगह में वृक्ष हैं। और जितना और नजदीक जाते हैं उस पहाड़ के, तब हम देखते हैं कि वृक्ष के भीतर भी विविधता है। यहाँ पत्ते हैं, यहाँ पर फूल हैं, फल हैं, और पंछी भी बैठे हैं। तो इस प्रकार से जब हम ज्यादा पास में आते हैं, करीब आते हैं, तब ये समझ में आता है कि पहाड़ विविधताओं से पूर्ण है। दूर रहने से ऐसे प्रतीत हो रहा था कि इसमें कोई विविधता नहीं है, केवल एक बादल के समान है। ठीक उसी प्रकार से जब परम सत्य का दर्शन या परम सत्य का साक्षात्कार बड़े दूर से होता है, प्राथमिक अवस्था में, तो परम सत्य का पूरा ज्ञान नहीं होता, पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। तो केवल उनको लगता है, इन ज्ञानियों को, कि परम सत्य केवल विविधता विहीन है, केवल एक रोशनी है। ठीक है, ये दृष्टांत, ही उपमा आप सबको समझ में आई ना, बहुत सरल उपमा है, तो इसको आप याद रखिएगा। प्रभुपाद जी इस उपमा को बार बार दोहराते हैं कि निराकार उपासकों की स्थिति क्या है, क्यों ऐसे बताया जाता है कि उनका साक्षात्कार प्राथमिक स्तर का है। ठीक है, आगे बढ़िए।
यह ज्ञानियों का लक्ष्य,
जो ज्ञान योग का पथ स्वीकार करते हैं, ऐसे लोगों का लक्ष्य है ये। आगे बढ़िए। फिर परमात्मा, अभी ब्रह्म की चर्चा संक्षेप में हो गई, अब रही बात परमात्मा की। परमात्मा क्या, के बारे में हम क्या जानना चाहते हैं, पढ़िएगा।
प्रत्येक के हृदय में तथा हर अणु में स्थित रूप।
हाँ, ये तो हम कह चुके हैं कि परमात्मा वो है, भगवान के रूप है, जो हर प्राणी के हृदय में विराजमान है और हर अणु के भीतर भी। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि वो भी सर्वव्यापी है। निराकार ब्रह्म सर्वव्यापी है, साथ साथ परमात्मा भी सर्वव्यापी है, परंतु इस दृष्टि से कि हरेक अणु के भीतर और हरेक हृदय के भीतर वो विराजमान है। ठीक है, आगे पढ़िए।
परम नियंता व स्वामी।
तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि मैं ही परम नियंत्रण करता हूं। किस रूप में वो नियंत्रण करते हैं भौतिक सृष्टि का, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, परमात्मा के रूप में वो सारे जगत का नियंत्रण करते हैं। साथ साथ में जब भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही भोक्ता हूं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति माम ऋच्छति, कि जो व्यक्ति शांति को प्राप्त करना चाहता है उसे इन तीन बातों को भली भांति जान लेना चाहिए। पहली बात कि मैं ही एकमात्र भोक्ता हूं, दूसरी बात कि मैं ही एकमात्र स्वामी हूं, मैं ही मालिक हूं हर चीज का, सारे ब्रह्मांड का, और मैं ही सबका शुभ चिंतक हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं परमात्मा के रूप में, तो परमात्मा ये कार्य करते हैं, परमात्मा इस भौतिक सृष्टि के नियंत्रण करता है, वो इस भौतिक सृष्टि के स्वामी हैं, वही सभी के शुभ चिंतक हैं। तो जब भगवत गीता में कृष्ण भगवान इस प्रकार से कहते हैं तो हमें जानना चाहिए कि वो अपने परमात्मा स्वरूप की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आगे पढ़िएगा,
परम सत्य का आंशिक प्राकट्य,
परम सत्य का आंशिक प्राकट्य, ये पूर्ण भगवान नहीं है, भगवान के अंश हैं ये। और भगवान पहले गीता में भी कह चुके हैं कि वैसे हे अर्जुन तुम मेरे ऐश्वर्यों के बारे में सुनना चाहते हो लेकिन कहां तक मैं तुम्हें सुनाऊंगा। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहम इदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत, मेरे तो ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है, कहां तक मैं वर्णन करते जाऊं, और केवल मेरे अंश मात्र से मैं सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण किया हुआ हूं। तो कौन है ये एकांशेन स्थितो जगत? ये परमात्मा है, केवल मेरे एक अंश ने ये भौतिक सृष्टि को धारण किया हुआ है, तो वो एक अंश है परमात्मा। हाँ जी पढ़िए, इनको क्षीरोदकशाय विष्णु भी कहते हैं। पिछली बार हमने तीन पुरुष अवतारों का वर्णन किया था, किस संदर्भ में आपको याद है? किस संदर्भ में बोलिए, विग्रह रूप में, विलास विग्रह की चर्चा जब हो रही थी पिछली बार। अब कह रहे थे कि भगवान के दो प्रकाश हैं, एक है प्रकाश विग्रह, दूसरे विलास विग्रह। विलास विग्रह में जो भगवान के विस्तार होते हैं वो रूप में थोड़े अलग होते हैं भगवान से, इसलिए उनको विलास विग्रह कहते हैं। उनके उदाहरण है पुरुष अवतार, चतुर्व्यूह अवतार रूप हैं, जैसे अनिरुद्ध, प्रद्युम्न आदि, बलराम भी इसमें आते हैं। तो ये पुरुष अवतारों में से तीसरे हैं क्षीरोदकशाय विष्णु, जो हरे ब्रह्मांड के भीतर निवास करते हैं, क्षीर सागर में वो अनंत शेष के ऊपर शयन करते हैं, तो वही परमात्मा के रूप में विस्तार करते हैं अपने आप को, और सबके हृदय में और हरेक अणु में वो उपस्थित रहते हैं। तो ये हैं परमात्मा। और भगवान, भगवान के बारे में सुनिए, घुमाइएगा, तो ब्रह्म परमात्मा, और एक है, अच्छा हाँ पढ़िएगा आखिरी पॉइंट पढ़िए।
जिस प्रकार असंख्य रत्नों में सूर्य का प्रतिबिंब,
जिस प्रकार से असंख्य रत्नों में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से वही एक भगवान असंख्य हृदयों में प्रकट कराते हैं अपने आप को। यह ऐसे भी वर्णन आता है कि समझ लीजिए कि हमने यहां 50 पात्र रखे जिनमें तेल है, ठीक है, सूरज के नीचे यहां पर धूप में रखा, और हर एक पात्र में आप जाकर देखेंगे तो क्या देखेंगे? आप सूर्य का प्रतिबिंब देखेंगे। आप कितने प्रतिबिंब देखेंगे आंगन में? जितने पात्र हैं उतने प्रतिबिंब देखेंगे। अगर आपने 50 पात्र रखे हो तो 50 प्रतिबिंब दिखाई पड़ेंगे। तो क्या इसका मतलब है कि 50 सूर्य हैं? सूर्य तो एक ही है, लेकिन भिन्न भिन्न पात्र में वही एक सूर्य का प्रतिबिंब प्रकट होता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान एक हैं, श्री कृष्ण। जब वो यहां पर प्रकट होते हैं भौतिक जगत में, जब वो क्षीरोदकशाय विष्णु के माध्यम से हर एक प्राणी के हृदय में प्रकट होते हैं, तो इस दृष्टि से इस प्रकार से होते हैं। तो फिर से इस पॉइंट को पढ़िएगा।
जिस प्रकार असंख्य रत्नों में सूर्य का प्रतिबिंब,
असंख्य रत्नों में सूर्य का प्रतिबिंब, तो जिस प्रकार से तेल के पात्र रखें उसी प्रकार से आप रत्नों को रख दीजिए, अलग अलग रत्नों को, वहां भी आप सूर्य का प्रतिबिंब देख पाएंगे। तो यहां पर रत्न या तेल के पात्र की तुलना हृदय से की गई है प्राणियों की। तो भगवान ऐसे परमात्मा के रूप में सब जगह विराजमान रहते हैं। तो अभी संक्षेप में हम चर्चा कर चुके हैं ब्रह्म और परमात्मा के बारे में। अगली बार जब क्लास होगा तब भगवान इसकी चर्चा करेंगे, और ये साबित कृष्णदास कविराज गोस्वामी करेंगे कि श्री कृष्ण ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन तीनों के स्रोत हैं। श्री कृष्ण भी भगवान है परंतु वह स्वयं भगवान है। ठीक है, तो ढाई बज के अब यहां पर समाप्त करते हैं, कथा को विराम देते हैं। आपके अगर कोई प्रश्न है, टीका है, तो आप कह सकते हैं। हाँ जी, प्रश्न ये है कि पहले दो मंगलाचरण श्लोकों में सामान्य और विशेष रूप से उन्होंने नमस्कार किया था, दोनों में अंतर क्या है? पहले तो सामान्य रूप अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के अन्य रूप जो हैं, ईश ईश, फिर गुरुन, ईश भक्तान, ईश अवतारान, जो भगवान के अवतार हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्रकाश हैं, भगवान की शक्तियां हैं, सामान्य रूप से इन सब का भी वर्णन हुआ था। महाप्रभु के साथ इन सब तत्वों का भी वर्णन हुआ था, 6 तत्वों का वर्णन हुआ कुल मिलाकर। इसलिए वो कहते हैं सामान्य रूप से मैंने नमस्कार किया, इन सबों को नमस्कार किया है, परंतु अब विशेष करके चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरणों में मैं नमस्कार करता हूं। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, हाँ जी, वो माइक जरा दे दीजिए। हाँ हरे
कृष्ण।
ब्रह्म से विविधताएं आती है? नहीं, ब्रह्म में हालांकि विविधताएं नहीं है, फिर भी ब्रह्म समस्त विविधताओं का आश्रय है। जैसे सूरज की किरणें, किरणों में कोई विविधता है क्या? नहीं, लेकिन सूरज की किरणों में समस्त ग्रह स्थित है ना, हमारे ब्रह्मांड के भीतर, सही है ना? तो ग्रहों में विविधता है ना, तो हालांकि किरणों में विविधता नहीं है, लेकिन किरण जो है सूरज के, वो भिन्न भिन्न प्रकार के विविधताओं के आश्रय हैं। सारे ग्रह वगैरह सूर्य की किरणों में स्थित हैं, सूर्य की किरण जो है वो उनको प्रकाश देते हैं सारे ग्रहों को। तो ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में भी निराकार ब्रह्म सर्वव्यापी है, प्रकाशमान है। निराकार ब्रह्म में विविधता नहीं है, परंतु सब कुछ निराकार ब्रह्म में स्थित है, और निराकार ब्रह्म श्री कृष्ण में स्थित है। आध्यात्मिक जगत में क्या है, अनंत कोटि वैकुंठ लोक है, तो वे समस्त लोक जो है वैकुंठ लोक, वो भी उसी प्रकार से आध्यात्मिक आकाश में तैर रहे हैं ब्रह्म ज्योति के अंदर। उसी प्रकार से समस्त भौतिक ब्रह्मांड वो भी तो ब्रह्म ज्योति में ही है, वो कारण सागर में तैर रहे हैं और ये भी सब ब्रह्म ज्योति में है, और वही उसी ब्रह्म ज्योति का प्रतिबिंब जो है वो सूरज के प्रकाश के रूप में यहां भौतिक जगत के अंदर होता है। और भी कोई प्रश्न? हाँ जी, माइक कोई देंगे पीछे? क्या ये सब विषय बहुत कठिन मुश्किल लग रहा है या सब आप सब समझ पा रहे हैं? आप में से कितने भक्तों को बहुत मुश्किल लग रहा है समझने के लिए? हाथ ऊपर कीजिए। थोड़ा मुश्किल लग रही, समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत? और थोड़ा ध्यान से इसको सुनने से और फिर से पढ़ने से ये सब स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी,
पिछले बार आपको बताया कि तक शक्ति में लक्ष्मीगढ़, महेशगढ़, प्रगतिगढ़ का समावेश होता है, तो भगवान की और भी शक्तियां अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तपस्या शक्ति और पराशक्ति, अपरा प्रकृति, अपरा शक्ति, इनका समावेश कौन सी जगह पर?
मूल सब कुछ श्रीमती राधा रानी है, सब कुछ उन्हीं से आता है, मूल शक्ति श्रीमती राधा रानी। पर उनसे उस श्लोक में तट शक्ति का वर्णन जब हुआ है तो केवल इन तीन वर्गों का वर्णन उन्होंने किया है। वैसे भगवान की शक्ति तो एक है, परंतु वो एक शक्ति विभिन्न कार्य संपन्न करती है, इसलिए उनको भिन्न भिन्न नाम दिए जाते हैं। तो भिन्न भिन्न नाम देने से हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि शक्तियां भिन्न भिन्न हैं, केवल एक हमारे समझ के लिए ऐसे विभाजन किया जाता है। जैसे एक साधारण उदाहरण दें, किसी भी देश में सरकार एक होती है, लेकिन वही एक सरकार भिन्न भिन्न कार्य देखती है, कृषि का कार्य, फिर रक्षा का कार्य, तो खेल का कार्य, तो इसलिए अलग मंत्रियां बन जाते हैं, रक्षा मंत्री, खेल मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, है एक ही सरकार, परंतु कार्य भिन्न है, इसलिए थोड़ी सुविधा के लिए ऐसे विभाजन किया जाता है। उसी प्रकार से भगवान की शक्ति तो एक ही है, परंतु ये एक शक्ति तरह तरह के कार्य संपन्न करती है, भगवान की सेवा के लिए, भगवान के संतुष्टि के लिए, इसलिए ये तरह तरह से अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग तरह से भगवान की शक्तियों का विभाजन किया जा सकता है। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, तो अगली बार परीक्षा में आप में से कितने भक्त आना चाहते हैं उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, कई भक्त आएंगे तो यहीं पे हम परीक्षा करेंगे, लेंगे थोड़ा स्थान। कृपया इतना देखिए कि कोई चीटिंग ना करें, साथ साथ में बैठे, दूरी पर बैठेंगे सब भक्त लोग, और एक दूसरे के पेपर में देखेंगे नहीं, और साथ में कोई किताब रखें तो किताब अच्छी तरह से बंद रखना चाहिए, और अपने आप साथ में कलम लेकर आइए, कागज हम दे देंगे ताकि कोई पहले से सब चीजें लिख कर न ले आए कागज के लिए। चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौतमानंदे।